आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अवार्ड्स अदा करेंगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जिसमें बहुत बड़ा अदालती निजाम मौजूद है और उसे कानून की बालादस्ती के बारे में किसी से सबक हासिल करने की जरूरत नहीं है। आज लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों का नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। भारतीय बहरिया ने बहरे अरब में ईरानी जहाज के 23 पाकिस्तानी बाशिंदों को सोमाली कजाकों से रिहा करा लिया है। टेनिस में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की भारत ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी आज रात मियामी ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में खेलेगी। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अवार्ड्स पेश करेंगी। आजहानी साबिक वज़ीर आज़म चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर और सरकर्दा साइंसदां एमएस स्वामीनाथन को बाद अज़मर्ग भारत रत्न से सरफराज किया जाएगा। साबिक डिप्टी वजीर आज़म और आजमूदाकार बीजेपी लीडर एलके आडवाणी को भी मुल्क का आला तरीन सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा है कि भारत एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहां एक बहुत बड़ा अदालती निजाम मौजूद है और जिसका मुकाबला किसी फर्द या ग्रुप से नहीं किया जा सकता। भारतीय जमहूरियत को एक मुनफरिद जमहूरियत करार देते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि भारत को कानून की बालादस्ती के सिलसिले में किसी से सबक हासिल करने की जरूरत नहीं है।
So India is that country. We don't need to be taught lessons in rule of law. India is a democratic nation with robust judicial system which cannot be compromised by any individual or any group. It is unique.
नई दिल्ली में कल सरकारी इंतजामिया के भारतीय इदारे IIPA के 70वें यौमे तासीस की तकरीबात से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज भारत में कानून के सामने मुसावात एक नया मामूल है और इस कानून के तहत उन लोगों को जवाबदेह करार दिया जा रहा है जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। उन्होंने भारत के अदालती निजाम को एक ऐसा बड़ा निजाम जो अवाम हामी और आजादाना तौर पर काम करने वाला है करार दिया। दाखिले उमूर की वजारत ने मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI को जेल में बंद आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन से पूछताछ की मंजूरी दे दी है, जिन पर मुबैना तौर पर एक शख्स सुकेश चंद्र शेखर से जबरन पैसा वसूलने का इल्जाम आयद है। जराय ने बताया कि यह मामला चंद्रशेखर की तरफ से लगाए गए इन इल्जामात से मुतालिक है कि सत्येंद्र जैन ने उनसे उस वक्त 10 करोड़ रूपये का मुतालबा किया था जब वो दिल्ली काबीना में एक वजीर थे। इस सिलसिले में चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को नवंबर 2022 में एक खत भी तहरीर किया था। आज लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले और दो शिमाल मशरकी रियासतों के वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के उम्मीदवारों का नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जुमेरात को की जाएगी, जबकि इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम बुध को खत्म हो गया था। बिहार में 4 पार्लियामानी हलकों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के लिए पार्लियामानी इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम कल खत्म हो गया। रियासत में इन कागजात की जांच पड़ताल आज की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख मंगल है। पहले मरहले के तहत बिहार और मरकज के जेर इंतजाम 4 इलाकों समेत 17 रियासतों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इसके साथ साथ सिक्किम में 32 असेंबली हलकों नीज अरुणाचल प्रदेश की 60 रुकनी असेंबली के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। ये सभी चुनाव अगले महीने की 19 तारीख को कराए जाएंगे। जिन रियासतों में लोकसभा के पहले मरहले के तहत इंतखाबात कराए जाएंगे वो हैं तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार जजायर और पुदुचेरी। भारत के इंतखाबी कमीशन ने होली के त्यौहार और बिहार के यौम तासीस की वजह से बिहार में कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 5 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने सीपी जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से मैदान में उतारा है, जबकि दामोदर गुर्जर राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेलुगुदेशम पार्टी के टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में आइंदा असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने 9 असेंबली सीटों और लोकसभा की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ टीडीपी ने 17 लोकसभा सीटों और 144 असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवारों को मुंतखब करने का अमल मुकम्मल कर लिया है, जिन्हें उसने रियासत में एनडीए के हिस्से के तौर पर अलॉट किया है। पंजाब में रियासती इंतखाबी अफसर के अहकामात की बुनियाद पर कई जिलों के हुक्काम ने अवाम को हिदायत दी है कि वो लोकसभा इंतखाबात से पहले करीबी पुलिस थानों और हथियार के बाइख्तियार डीलरों के पास अपने लाइसेंस वाले हथियार जमा करा दें। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रियासत में सरेदस्त 2,38,000 लाइसेंस वाले हथियार अब तक जारी किए जा चुके हैं। तफसील हमारे नवा निकार से।
रियासत में जारी किए गए हथियार के लाइसेंस की बुनियाद पर अवाम के पास सरेदस्त मुख्तलिफ किस्म के 2,87,000 हथियार मौजूद हैं। बठिंडा जिले में सबसे ज्यादा 26,299 हथियार जारी किए जा चुके हैं। हथियार रखने के मामले में खवातीन भी पीछे नहीं हैं। 4,328 हथियार औरतों के नाम से रजिस्टर्ड हैं। इनमें सबसे ज्यादा 453 हथियार पटियाला जिले की औरतों के पास हैं। हथियारों के कानून के मुताबिक एक लाइसेंस की बुनियाद पर 2 हथियार रखे जा सकते हैं और ऐसे लाइसेंस रखने वाले अफराद जिनके पास 2 हथियार मौजूद हैं उनकी तादाद 60,000 है। जालंधर से शिशु शर्मा शांतल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
लोकसभा इंतखाबात के दौरान रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज करते हुए हम अपनी जारी सीरीज के तहत अब लद्दाख का रुख करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वोटिंग 20 मई को पार्लियामानी इंतखाबात के 5वें मरहले के दौरान होगी। वाहिद सीट के लिए खित्ते की यह पहली आजादाना पोलिंग होगी जो रियासत जम्मू कश्मीर के तहत पहले एक हलका था। तफसीलात हमारे नमा निगार से।
इलाके के एतबार से लद्दाख को भारत के सबसे बड़े हलके होने का एजाज हासिल है। वाजे तौर पर इसकी सरहदें लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पाकिस्तान और हकीकी कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल चीन से मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी लद्दाख की वाहिद सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली 2 अहम कौमी जमातें हैं। अब तक किसी भी और पार्टी ने अपने दस्तावेजात दाखिल करने का ऐलान नहीं किया है। लद्दाख लोकसभा सीट लेह और कारगिल अजला पर मुश्तमिल है। इसमें 1,82,571 राय दहिंदगान हैं, जिनमें 91,703 मर्द वोटर्स जबकि 90,867 खातून वोटर्स हैं। लद्दाख इंतजामिया ने 577 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के आला चुनाव अफसर आमतौर पर वोट डालने वालों और बिलखसूस पहली बार वोट डालने वालों के बीच बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम कर रहे हैं। वांगमो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
भारतीय बहरिया ने ईरान के एक माहीगीर जहाज और उसके अमले के 23 पाकिस्तानी बाशिंदों को सोमाली कजाकों से रिहा करा लिया है। इन लोगों को बहरे अरब में कजाकी की रोकथाम से मुतालिक 12 घंटे से ज्यादा की एक कार्रवाई में रिहा कराया गया। भारतीय बहरिया के फौजियों ने अपनी तकनीकी महारत और तालमेल पर मबनी हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए इन कजाकों के साथ बातचीत शुरू की और इन्हें बगैर किसी खून खराबे के हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। हथियार डालने का यह वाकया कजाकी से निमटने और खित्ते में बहरी सरगर्मियों को महफूज बनाने की यकीन दहानी में एक फैसलाकुन कामयाबी है। बहरिया ने एक बयान में कहा कि जुमेरात को ईरान के माहीगीर जहाज अल कम्बर 786 में कजाकी के एक इम्कानी वाकये के बारे में मौसूला सुराग की बुनियाद पर भारतीय बहरिया के 2 जहाजों INS सुमेधा और INS त्रिशूल को बहरे अरब में तैनात किया गया ताकि अगवा किए गए माहीगीर जहाज को रोका जा सके। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और यूक्रेन के उनके हम मनसब दिमित्रो कोलेबा ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाजे और उसके वसी तर नतज के बारे में बातचीत की। वजारत खारजा ने बताया कि दोनों वजीरों के दरमियान इस मीटिंग में भारत और यूक्रेन के दरमियान तामीरी मुजाकरात को फरोग देने और दुतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। ताल्लुकात में तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, दिफा, जिरात, सेहत, सकाफत और तालीम शामिल हैं। دونوں وزیروں نے تجارتی، معاشی، سائنسی، تکنیکی، صنعتی اور ثقافتی تعاون اور اس سے متعلق ورکنگ گروپ کے بارے میں بھارت یوکرین بین سرکاری کمیشن سے متعلق معاملات پر بھی علیحدہ بات چیت ہوئی۔ طرفین نے اس سال کے آخر میں ساتویں بین حکومتی کمیٹی میٹنگ منعقد کرنے کی جانب کام کرنے سے اتفاق کیا۔ وزارت نے کہا کہ علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں جاری تنازع اور ایک پرامن حل تلاش کرنے کی کوششوں پر جامع مذاکرات بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ جمعرات کو بھارت کے دو روزہ دورے پر یہاں آئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے بتایا کہ انہوں نے آئندہ دنوں میں قطر اور مصر میں اسرائیل کی قیادت والے مذاکرات کاروں اور با اختیار اسرائیلی مندوبین کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق بات چیت میں شامل ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو کا یہ اعلان حماس کے ساتھ سودا کرنے کی ایک اور کوشش ہے، جس کے بعد اسرائیلی غمالوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں اسرائیل کے فوجی حملے رک جائیں گے۔ چونکہ اس جنگ کو جاری رہتے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہونے والے ہیں، امریکہ، قطر اور مصر جنگ بندی اور غمالوں کی رہائی کے لیے ایک اور معاہدہ کرنے کے مقصد سے ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوششیں پہلی بار نومبر میں شروع کی گئی تھیں۔ جمعرات کو غزہ میں جاری اسرائیل کی طرف سے انتقامی حملوں کے پیش نظر انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ غزہ میں امدادی سامان بلا رکاوٹ جانے دے تاکہ وہ وہاں بھکمری ختم کی جا سکے۔ یہ فیصلہ انصاف کی بین الاقوامی عدالت نے اس وارننگ کے دوران متفقہ طور پر کیا تھا کہ غزہ میں کچھ ہی ہفتوں میں بھکمری پھیل جائے گی۔ سینیگال کی آئینی کونسل نے صدارتی انتخاب میں اپوزیشن امیدوار بیسیرو دیومے فائے کے کامیاب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے افریقی ملک کا 5واں صدر بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عارضی نتائج کو جائز قرار دیا ہے، جن کا اعلان بدھ کو کیا گیا تھا۔ قطعی سرکاری نتائج کے مطابق فائے کو پہلے مرحلے کی کامیابی میں 54.28% ووٹ حاصل ہوئے۔ یہ انتخاب 24 مارچ کو کرایا گیا تھا۔ میامی اوپن ٹینس میں بھارت کے روہن بوپنہ اور ان کے آسٹریلیائی ساتھی میتھیو ایبڈن آج امریکہ میں مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں امریکہ کے دوسرے سیٹ کے کھلاڑی آسٹن کراجسک اور کروشیا کے ایون ڈوڈنگ کا سامنا کریں گے۔ چوٹی کے سیٹ کی بھارتی آسٹریلیائی جوڑی اسپین کے چوتھے سیٹ کے مارسل گرینولرز اور ارجنٹینا کے ہیروسیو زیبلوس کی جوڑی کو 6-1-6-4 سے شکست دینے کے بعد فائنل پہنچی ہے۔ بوپنہ کے لیے، جنہوں نے اب تک ڈبلز کے 25 خطاب حاصل کیے ہیں، 14ویں اے ٹی پی ماسٹرز کا یہ 1000واں فائنل ہوگا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات بنگلورو میں رائل چیلنجرز بنگلور پر 7 وکٹ سے جیت حاصل کی۔ اس کے جواب میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے جیت کا یہ نشانہ محض 16 اوورز اور 5 گیندوں میں 3 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخبارات نے انکم ٹیکس محکمے کی طرف سے کانگریس کو 1823 کروڑ روپے کا نیا نوٹس جاری کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ نوٹس ٹیکس میں ہوئے بےضابطگیوں کے سبب جاری کیا گیا ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے نئی دلی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن آئی آئی پی اے کے 70ویں یوم تاسیس کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایک مضبوط عدالتی نظام ہے اور ملک کو قانون کی حکمرانی پر کسی دوسرے ملک سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ یونیسیف انڈیا نے آئی آئی ٹی ممبئی کے ساتھ ڈیجیٹل ہیلتھ کورس کا آغاز کیا، جس کی شروعات 17 اپریل 2024 کو ہوگی۔ اس خبر کو راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے اولیت دی ہے۔ راشٹریہ سہارا نے بھارت، موزمبیق اور تنزانیہ کی بحریہ کے درمیان سہ فریقی مشق کے موزمبیق کے شہر ناکالا میں ختم ہونے کی خبر کو بھی اجاگر کیا ہے۔
اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں بھارت رتن ایوارڈز عطا کریں گی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ بھارت ایک ایسا جمہوری ملک ہے جس میں بہت بڑا عدالتی نظام موجود ہے اور اسے قانون کی بالادستی کے بارے میں کسی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے اور سکم اور اروناچل پردیش میں اسمبلی انتخابات کے امیدواروں کا نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ بھارتی بحریہ نے بحیرہ عرب میں ایرانی جہاز کے 23 پاکستانی باشندوں کو صومالی قزاقوں سے رہا کرا لیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں بنگلورو میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔